نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نبی کریم رؤوف و رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس عظیم اور شانوں والی ذات پر درود پاک پڑھنے کی بے شمار برکتیں ہیں، اور اتنی بڑی برکت کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ کی ذات اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑے۔ سبحان اللہ، یعنی کتنی بڑی بشارت ہے اور کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ جو یہ چاہے کہ جب میں خدا کی بارگاہ میں پیش کیا جاؤں تو اللہ کی ذات مجھ سے راضی ہو، وہ مجھ مصطفیٰ پر کثرت سے درود پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عادت بنائیے جہاں جہاں شریعت اجازت دیتی ہے ہر اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے گزشتہ ایپیسوڈز میں شیطان کی مختلف چالوں کے متعلق گفتگو کر چکے ہیں۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ یہ ہے کہ شیطان انسان کو آخرت سے غافل کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے کہ آخرت پر سے اس کا ایمان کمزور کرتا ہے، یا آخرت میں جو چیزیں اسے درپیش ہونی ہیں ان سے غافل کر دیتا ہے، یعنی حقیقت کے اندر یوں کہہ لیجئے کہ جو اس کی حقیقی منزل اور جو اس کا ٹھکانہ ہے وہ اس کو بھلا دیتا ہے۔ حالانکہ ہم سب یہ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور ہمارے لاشعور کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ حقیقی منزل اور ٹھکانہ وہ آخرت کا گھر ہے۔ یہ دنیا تو محض ایک عارضی ٹھکانہ ہے جہاں میں اور آپ ہم محض بطور مسافر یہاں پر آئے، اور یہاں سے ہم نے جب ہمارا سفر پورا ہوگا ہم نے کوچ کر جانے، اور ہماری حقیقی منزل جو ہے وہ آخرت ہے۔ اور شیطان بہت بڑا وار یہی کرتا ہے کہ ایسی الجھنوں میں ڈالتا ہے کسی مسلمان کو، یا ایسی مصروفیات میں مبتلا کرتا ہے کہ وہ اپنی منزل یعنی آخرت کو بھولتا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، اور ہرگز شیطان تمہیں نہ روکے، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب یہ جو فرمایا گیا کہ شیطان تمہیں نہ روکے، کس چیز سے نہ روکے، اس کی تفسیر کرتے ہوئے مفسر قرآن حضرت علامہ مولانا مفتی محمد قاسم صاحب نے جو تحریر فرمایا وہ یہ ہے کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ہرگز شیطان تمہیں شریعت کی پیروی کرنے سے، یا قیامت کا یقین رکھنے سے، یا اللہ تعالیٰ کے دین پر قائم رہنے سے نہ روک دے۔ یعنی یہ تین طرح کی چیزیں ہیں جن سے شیطان تمہیں بالکل بھی نہ روکے، آخرت پر ایمان سے، اللہ تعالیٰ کے دین پر قائم رہنے سے، اور شریعت کی پیروی کرنے سے، کیونکہ شیطان کھلا دشمن ہے۔ قرآن پاک میں بار بار بیان کیا گیا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، یہ مانو، یہ یقین رکھو، اس پر ایمان لاؤ کہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ اور شیطان کی دشمنی کی پہچان اللہ کریم نے قرآن حکیم میں جگہ جگہ ارشاد فرمائی، بار بار بیان کیا کہ یہ چیزیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ ان میں سے ایک چیز جو اللہ کریم نے بیان فرمائی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدو مبینا، ترجمہ، بے شک شیطان لوگوں کے درمیان فساد ڈال دیتا ہے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یہ شیطان کی پہچان ہے کہ شیطان ہم انسانوں اور مسلمانوں سے دشمنی رکھتا ہے، اور وہ گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ فساد پڑے گا، ہزاروں جو چیزیں ایسی ہوں گی کہ جو ہمارے درمیان پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی، تو شیطان فساد ڈالتا ہے۔ یہ فساد ڈالنا بتاتا ہے کہ شیطان دشمن ہے، انسانوں کا، مسلمانوں کا دشمن ہے۔ اور شیطان جو ہے وہ آخرت سے غافل کرتا ہے، اس کا ایک بڑا طریقہ جو شیطان استعمال کرتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ جو دنیاوی نعمتیں ہیں ان کو بڑا بنا سوار کے پیش کرتا ہے، اور کسی بھی مسلمان کا دل مکمل طور پہ ان دنیاوی نعمتوں میں مگن کر دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو شیطان کی اس چال کو بیان کیا، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، فرمایا، لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبت کو آراستہ کر دیا گیا، यानी औरतों और बेटों और सोने चांदी के जमा किए हुए ढेरों और निशान लगाए गए घोड़ों और मवेशियों और खेतियों को उनके लिए आरास्ता कर दिया गया। ये सब दुनियावी ज़िंदगी का साजो सामान है और सिर्फ अल्लाह के पास अच्छा ठिकाना है। यानी ये जितना कुछ बयान किया गया इन सब को शैतान की तरफ से लोगों के लिए आरास्ता कर दिया गया है, जबकि अच्छा ठिकाना, बेहतरीन ठिकाना तो अल्लाह की बारगाह में है। दुनिया के अंदर मवेशी, उस ज़माने में तो घोड़े हुआ करते थे, आज तरह तरह की आसाइशें हैं, ये तमाम चीज़ों को बड़ा अच्छा बना संवरा कर दिया गया है और हमारा उनमें बड़ा दिल लगता है। तो ये बहुत ज़्यादा ही दिल लगा लेना और अल्लाह की याद से गाफिल हो जाना और आखिरत को भूल जाना, ये दर हकीकत शैतान की चाल है। शैतान उसके अहले खाना, उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसके करीबी रिश्तेदार, उसके दोस्त, उसके माल मवेशी, उसके असासे, उसकी जायदादें, उसकी सवारियां, ये तमाम चीज़ें उसको ऐसी अच्छी लगवाता है कि वो हकीकत के अंदर जो उसकी हकीकी मंजिल और ठिकाना है वो उसको भूल जाता है। हालांकि अल्लाह करीम ने ये तमाम आसाइशें जो हमारे दाएं बाएं हमें नज़र आती हैं और अल्लाह ने हमें अता फरमाई, ये क्यों बनाई? ये इस इम्तिहान के लिए बनाई ताकि ये समझ आ जाए कि कौन ख्वाहिश परस्त है और कौन खुदा परस्त है, कौन है कि जो अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलने वाला है और कौन है कि जो इन सब चीज़ों के होते हुए भी अल्लाह के अहकाम पर अमल करने वाला है। सब कुछ खुदा ने उसे दिया है, हर नेमत अल्लाह ने उसके कदमों में रखी है, मगर इसके बावजूद भी वो खुदा के अहकाम को नहीं भूलता, वो अपनी मंजिल को नहीं भूलता, वो अपनी आखिरत को नहीं भूलता। ये पहचान करने के लिए अल्लाह ने ये सब कुछ बनाया। अल्लाह करीम ने कुरान हकीम में इरशाद फरमाया, इन्ना जालना मा अलल अर्दी जीनत अल्लाह लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला। तर्जमा, बेशक हमने जमीन पर मौजूद चीजों को इसलिए जीनत बनाया ताकि हम लोगों को आजमाएं। कैसे आजमाएं? कि उनमें अमल के एतबार से कौन अच्छा है। ये सारा कुछ अल्लाह करीम फरमा रहा है, जिसने बनाया सारा कुछ, जिसने हमें सब अता किया, वो फरमा रहा है कि ये सारा कुछ जो हमने बड़ा खूबसूरत, बड़ा मुजयन, बड़ा प्यारा और बड़ा हसीनो जमील और बड़ा अट्रैक्टिव बनाया है, मकसद ये है ताकि पहचान हो जाए कि कौन अच्छे अमल करते हैं, इन सब के बाद भी कौन खुदा का रहता है और इन सब के मिलने के बाद कौन इन चीज़ों का हो जाता है। इन दो तरह के लोगों में फ़र्क करने के लिए अल्लाह करीम ने इन तमाम चीज़ों को बड़ा मुजयन बनाया। अब यहाँ पर शैतान अपना वार करता है कि वो उसके करीबी लोग, उसकी चीज़ें, उसका मालो मता उसको इतना अच्छा लगवाता है कि वो उन्हीं चीज़ों का हो जाता है और खुदा के रास्ते से हट जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की अहादीस हमें बड़ा वाज़े तौर पर बताती हैं कि दुनिया का हुसूल और दुनिया का होना ये सब अपनी जगह, मगर इंसान को अपने रब की याद से गाफिल नहीं होना चाहिए। आप सोचिए, खुदा के जो नेक बंदे और बिलखसूस सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, कितना मालो दौलत अल्लाह ने उनको अता फरमाया। हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रदी अल्लाह तआला अन्हु, मालो दौलत अल्लाह ने बहुत नसीब फरमाया, बहुत गनी बनाया, मगर इसके बावजूद कि इतना मालो दौलत खुदा करीम ने उनको अता फरमाया, वो इतनी मालो दौलत के बावजूद भी खुदा की याद से गाफिल नहीं थे। वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लाए हुए अहकामात पर बढ़ चढ़ कर अमल करने वाले थे। लाखों करोड़ों के आज के ज़माने के अतबार से उनके पास असासे होंगे, मगर इसके बावजूद वो हमेशा अल्लाह के अहकामात पर अमल करने वाले रहे। दुनिया पास थी मगर वो दुनिया के पास नहीं थे, वो खुदा की बारगाह के अंदर हाजिर थे। एक बड़े मशहूर सहाबी हैं हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह तआला अन्हु, सहाबी रसूल हैं और तुजार सहाबा किराम में इनका बहुत बड़ा नाम है। इनकी तिजारत, इनके बागात, इनके असासा जात, एक बड़ा नाम था इनका, मगर सहाबी रसूल हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े प्यारे हैं। मालो दौलत अल्लाह देता है और बड़ों को दिया, मगर उस मालो दौलत के साथ ऐसा दिल लगाना कि आखिरत को भूलना, ये बुरा है। आप सोचिए कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, कितनी बड़ी दौलत अल्लाह ने उनको अता फरमाई कि उन जैसी बादशाही खुदा ने किसी और को नसीब ही नहीं फरमाई। उन्होंने सवाल ही इतनी बड़ी बादशाही का किया था, मगर इतना मालो दौलत, इतनी बड़ी बादशाहत, इतनी बड़ी सल्तनत, इतनी आला दर्जे की हाकमियत थी कि वो जो हर चीज़ पर हुक्म चलाने वाले थे, इसके बावजूद वो खुदा के बरगजीदा नबी थे, वो अल्लाह के बड़े प्यारे थे और खुदा के अहकाम पर अमल करने वाले थे। दुनिया कमाना या दुनिया का हासिल करना बुरा नहीं होता, दुनिया के साथ दिल लगाना बुरा होता है। आपकी जेब में करोड़ रुपया है, ये करोड़ होना बुरा नहीं है, लेकिन इस जेब में पड़े हुए करोड़ के आप इसके हो जाएं और आखिरत को भूल जाएं, ये बुरा है। लेकिन जेब में करोड़ है, दिल अल्लाह की याद के साथ जुड़ा हुआ है, तो करोड़ों की जगह अरबों भी हो तो वो बुरा नहीं है। बल्कि कमाने का हुक्म तो अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया। आप देखिए कुरान पाक की कितनी आयात हैं जहाँ पर अल्लाह करीम ने बड़ा वाज़े फरमाया कि खर्च करो, तो खर्च कौन करेगा? जिसके पास होगा वो खर्च करेगा। यानी कुरान पाक की कई आयात हैं जहाँ पर इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह का हुक्म है कि अल्लाह की राह में खैरात करो। तो खैरात बेचारा वो तो नहीं करेगा कि जिसके पास पहनने के कपड़े भी नहीं है, या जिसके पास जेब में कुछ भी नहीं है, वो तो खैरात नहीं करेगा। खैरात का हुक्म देने का ऑटोमेटिकली मतलब ये है कि वो शख्स कुछ कमाए ताकि वो खैरात करे, उसके पास कुछ हो तो वो खैरात करे। तो इसके पीछे जो हकीकी हुक्म गोया दिया गया वो कमाने का ही है कि कमाओ ताकि माल आए और फिर अल्लाह की राह में खैरात करो। यतीमों की मदद का हुक्म है, गरीबों की मदद का हुक्म है, बेवाओं की मदद का हुक्म है, नादार की मदद का हुक्म है। तो मदद करेगा कौन? जिसकी जेब में पैसे होंगे। तो जेब में पैसे लाने के लिए चोरियां तो नहीं करनी, डकैतियां तो नहीं करनी, हलाल तरीके से कमाना है ना। तो ये सारा कुछ करने के लिए दर हकीकत हलाल कमाई करनी है। तो ये जो कमाई का हुक्म हमारा दीन हमें देता है, ये कमाई बुरी नहीं है, दौलत बुरी नहीं है, लेकिन दौलत के साथ दिल लगाना बुरा है। यहाँ पर शैतान की चाल है कि आप दौलत कमाएं मगर दौलत कमा के नमाजों से गाफिल, ज़कातों से गाफिल, पैसे पर सांप बन के बैठना, अकाउंट से पैसा एक रुपया ना निकालना, कि जो सारा कुछ है ये बहुत बुरा है। और ये है वो चीज़ कि जो माल जमा करने की जो वईदे अल्लाह करीम ने बयान फरमाई और माल के हुसूल और दुनिया की लालच की जो मजम्मत है वो ये वाली है। नॉर्मली दुनिया की हुसूल की तलब ताकि अल्लाह की राह में खैरात किया जाए ये तो बुरा नहीं है, ये तो अच्छा है। तो हमें शैतान जो वार करता है और जो हमला करता है वो ये होता है कि शैतान हमें ये वार हम पर डाल देता है और ये चाल चलता है और ये हम पर डोरी डालता है कि दुनिया कमाने के अंदर हमें इतना मगन करता है कि हमें आखिरत से गाफिल करते हैं। तो आखिरत से गाफिल करना ये शैतान का बड़ा वार है। अल्लाह करीम हर ऐसे सबब और हर ऐसी चीज़ से मुझे और आपको महफूज फरमाए कि जो हमें आखिरत से गाफिल करे। अल्लाह हमें आखिरत का फ़िक्रमंद रखे, अपनी कब्र व हशर की फ़िक्र करने की तौफीक नसीब फरमाए, और जब हम खुदा की बारगाह में हाजिर हों अल्लाह हमें उस वक्त अपने पसंदीदा बंदों में शामिल फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
नफ्स बदकार ने दिल पर ये कयामत